गुरु रूप प्यारी सात संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी की कमोलक लिखत जप जी साहब दे अर्थ आप जी ने पढ़ के सरवण करा रहे सी जी। आओ पौड़ी दूजी दे अर्थ सरवण करन की कोशिश करिए जी। प्रा कथन ए सुन के सुते ही प्रश्न आंदा है कि हुक्म जो आपने दसिया है की वस्तु है। उत्तर देंदे हन मूल हुक्मी ओवन नाकार, हुक्म न कहा जाई, हुक्मी ओवन जी, हुक्म मिले वडियाई, हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाइए। अर्थ अकथ परमात्मा दा हुक्म कथन नहीं कीता जा सकता, पर उसका कर्तव्य प्रतक है कि उसके हुक्म नाल आकार अर्थात ना दिसण वाले ते दिसण वाले सूरतां वाले पदार्थ ते ए सूरत वाला जगत रचे जांदे हन। फिर इस जगत विच रहण वाले ते पदार्थां नूं माणन वाले जीव भी हुक्म नाल ही रचे जांदे हन। उस दे हुक्म नाल जीवां नूं वडियाई मिलती है। हुक्म नाल ही मनुखां विच उत्तम ते नीच हन। हुक्म द्वारा लिखे गए लेखां अनुसार दुख ते सुख पाईदा है। मूल इक ना हुक्मी बख्शीश, इक हुक्मी सदा पवाईए। अर्थ एक नानू तां हुक्म नाल बख्शिश प्राप्त आउंदी है ते एक हुक्म नाल सदा जन्म मरण दे चक्कर विच पुआए जांदे हन। मूल हुक्मे अंदर सब को बाहर हुक्म न कोए, नानक हुक्मे जे बुझे तां होमे कहे न कोए। अर्थ सब कोई हुक्म दे विच है, हुक्म तों बाहर कोई नहीं है। जे उस दे हुक्म नू कोई समझ लवे तां हे नानक फिर वह होमे का नाम ना लवेगा, अर्थात उसकी हौं टुट जाएगी। ए हौं ही कूड़ी पाल है जो सानू सच्यार नहीं बनन देंदी। हौं टुटी तो सच्यार हो गया। व्याख्या पिछली पौड़ी विच कथे हुक्म की इस पौड़ी विच कुछ व्याख्या दसी है। पहले तो दसदे हन कि हुक्म अकथ है, क्योंकि हुक्म उसके अपने स्वरूप तो वक्री वस्तु नहीं। जिमें हुक्मी साड़ी समझ तो परे है, उसनू असी वर्णन नहीं कर सकते, तिवें असी हुक्म का वर्णन भी नहीं कर सकते। पर उस हुक्म द्वारा जो कुछ हो रहा है उसका कुछ जिक्र करते हैं। हुक्मी निराकार है, पर जितने दृश्य या अदृश्य आकार हैं सब उसके हुक्म द्वारा होए हैं। फिर जीवां दियां अनेक श्रेणियां हैं, कोई नीवियां कोई उच्चियां, जिमें बनस्पति जीवन रौं विच घटिया है ते मनुख सब तो वधिया है। सो ए वडियाई ते छुटियाई हुक्म द्वारा होई है। फिर मनुख श्रेणी विच कोई उत्तम हन कोई नीवे हन, ए भी हुक्म द्वारा है। असी जो मनुखी शरीर विच दुख सुख पा रहे हाँ वो साडे कीते कर्मां अनुसार हुक्म ने ही लेख लिखे हन। हुक्म द्वारा ही सदा जन्म मरण दे गेड़ विच पवाईदा है ते हुक्म द्वारा ही बख्शिश दा दर प्राप्त होंदा है। हुक्म इतना बलवान है कि सारे उसदे हुक्म हेठा हन, कोई उस तों बाहर नहीं। जैसा कि धरती चंद सूरज सूर सियारे सितारे सब रचना हुक्म विच टुर रही है, कोई हुक्म विरुद्ध नहीं टुर सकता। फिर दसदे हन कि जे कोई मनुख हुक्म नूं बुझ लवे तां फिर वह होमे नहीं कहेगा, भाव उसकी होमे दूर हो जाएगी। हुक्म बुझण नाल हौं टुटदी है, हौं ही कूड़ दी पाल है। सो हुक्म दा पछाणु पाल टुटण ते बिस्माद विच अपड़दा है। हुक्म बिस्माद हुक्म पछाणे जी जुगत सच जाणे सोई। गुरबाणी विच एक पासे हुक्म दा जिक्र है, दूजे पासे कर्म दा जिक्र आउंदा है। इन्हां दोहां दा समाधान गुरबाणी तों एवं कुछ खुलदा है। जीव मित विच हन, हुक्मी अमित है। जीव देश काल वस्तु नाल बजे हुए हन, इन्हां दा हुक्म देश काल वाला है। सत्य स्वरूप देश काल आदि तो परे है, उसका हुक्म भी परे है। हुक्म सत्य स्वरूप नाल सत्य स्वरूप है। यथा सच्चे तेरे करणे सर्व विचार, सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान, पुनः सच्चा तेरा हुक्म गुरमुख जाने। पावे के आप सत्य है, हुक्म भी सत्य है, आप अकत है, हुक्म भी अकत है, सो सत्य स्वरूप आप अकत है, इस करके उसदा हुक्म भी कया नहीं जा सकता। यथा हुक्म न जापी केतड़ा, पुनः हुक्म न कहा जाई। जीव श्रेणी दे हुक्म नू सत्य स्वरूप दे हुक्म दी तुलता दे के ये आख देना के परमात्मा देव विच जे हुक्म मनिए तां ओ परिणामी हो जाएगा ठीक नहीं, क्योंकि उसका स्वरूप उसकी चेतना उसका हुक्म ते विचार जो कुछ भी कहो देश काल तो परे है ते इंसानी समझ तो अगम है। तां ते इंसान का हुक्म आनंद दे हुक्म दी सदर्शता नहीं रखता। ये हुक्म अंत वाला है, वह हुक्म अनंत है, क्योंकि हुक्म अनंत की अपनी चेतना है, कोई वक्री वस्तु नहीं, तां ते वह अपने हुक्म नाल परिणामी नहीं होंदा। हुक्म नू इस तरह अकथ दस के इस पौड़ी विच फिर उस हुक्म दे कर्तव्य दसे हन, फिर हुक्म सब तो हावी दसिया है। गुरबाणी विच जगह जगह हुक्म दा जिक्र आउंदा है, परनाली कर्म दा जिक्र भी आउंदा है। उन सरसरी नजरे जापदा है जे हुक्म है तां कर्म नहीं, जे कर्म है तां हुक्म दा केड़ा थां। पर गुरबाणी दे पर अपर विचार के तकीए तां गुरु जी ने हुक्मी ते हुक्म दा त्रवा बन के फिर कर्मां नू भी लिया है। यथा कर्मां उपर निबड़े जे लोचै सब कोय, पुनः दद्दै दोष न देउ किसै दोष कर्मां आपणे। पर गुरु जी ने कर्म नू अटुट नहीं मने, जैसा कि पंजवें सतगुरां ने फरमाया है, जब कछ न सियो तब क्या करता कवन कर्म कर आया। कबीर जी ने कहा है, कर्म बद तुम जियो कहत हो, कर्म है किन जियो दीन रे। अर्थात कर्म जीव दे तार के करदा है, सो कर्मा दा आद हो गया, जिस दा आद है उसका अंत भी होंदा है। इउं कर्म मनिया पर उसनू अटुट ना मनिया। गुरु जी दे समय तो पहलो हिंद पुरातन मुख धर्मां विच कर्म अटुट है, कर्म सबल है, कीते दा फल कर्म दी लपेट आपे देंदी है, किसे होर दी लोड़ नहीं। जे कर्म नू जाचे तोले ते फल देवे या कर्म दी सबलता वधावे कटावे, किन्ना हालतां विच कर्म होए हन इन्हां दी विचार करे। नीयत ते कर्म दा किन्ना को परस्पर असर है, कोई थां बख्शिश दी भी है कि नहीं। ये सारा इंसाफ नू इंसाफ रखण वाला पहलू ते नाल ही बख्शिश दा पहलू कर्म दे फिलसफे विचों लगभग उड़ चुके सन। कर्म अटुट मनिया जांदा सी। गुरु जी ने हुक्म ते हुक्मी दा पहलू निरूपण करके दसिया कि कर्म फल देंदा है पर सिर ते फल प्रदाता है। जो अपनी अंतरयामता विच कर्म नू तोलदा जांचदा पड़तालदा छाणदा पुणदा है ते अपने हुक्म नाल फल देंदा है। हुक्म चलाए आपणे कर्मी वह कलाम, कर्मा अनुसार कलम वहिंदी है पर हुक्म उसनू तोरदा है। इसलिए आपने फरमाया कि कर्म अटुट ते अमिट नहीं, पर कीते कर्मा अनुसार हुक्मी दे लिखे लेख अमिट हन। यथा लेख न मिटई है सखी जो लिखिया करतार। जीव दे अपने कर्मा विच निरा हुक्म चल रहा मनिया जाए तां जीव दी इखलाकी जिम्मेवारी कोई नहीं रहिंदी, पर हर जीव दे अंदर इखलाकी नुक्ता मौजूद है जो दलील है इंसान दी इखलाकी जिम्मेवारी दी। फिर जीव विच बुद्धि है, चोण दी सुतंत्रता है, चोण दी सुतंत्रता भी जिम्मेवारी दी दलील है। जे निरा कर्म मनिए ते उसनू सुतंत्र फल प्रदाता मनिए तां कर्ता पुरख दी होन तो मन उटक जांदा है ते फल आउंदा है निराशता। फिर कर्म दे धार के कीते ओ अटुट हो नहीं सकदे। निरे कर्म दी मसलाबाजी निराशता विच लै गई ते नितानिया कर गई। इंसान दी तबीयत भुलणहार है, कर्म सारे शुद्ध नहीं हो सकदे। एक वारी जो टिंडां दा गेड़ चलिया अमुक हो गया, इउं बेवसी लख के दिल विच निराशता आई ते निराशता तो निताण पुणा। जद गुरु जी ने हुक्मी दी पूजा सिखाई ते कर्म दे सिर हुक्मी दी विचार दी कसवटी ते उसकी सफलता दा दौर कर्म नू कट सकण दा दसिया तां मन निराशा विचों निकल गए ते चढ़दियां कलां विच चले गए। यथा ਜਿਨੀ ਪਛਾਤਾ ਹੁਕਮ ਤਿਨ ਕਦੇ ਨਾ ਰੋਵਣ। ਨਿਰਾਸਾ ਭਾਰੀ ਕਰਮ ਦੀ ਟੇਕ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਸਾ ਭਾਰੀ ਹੁਕਮੀ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਆਸਾ ਬੱਜਣ ਨਾਲ ਮਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਤਖ ਫਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਦਮੀ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਮਲੀ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਣਾਮੀ ਰਹਿਮ ਤੇ ਅਦਲ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਿਤ ਤੇ ਸਬਲ ਦੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸਦੀ ਅਨੰਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਅਨੰਤ ਤੇ ਅਸੀਮਾ ਤੇ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਆਸਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤ ਤੇ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਦਲ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਰਖ ਯਾਨੀ ਰਾਜਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਸੀਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਦੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੀ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨਤਾ ਕੀ ਹੋਈ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਨੰਤ ਰਹਿਮ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਹੱਦ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਖਸ਼ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਮਤ ਕੋ ਫੱਕੜ ਪਾਏ, ਲਖ ਮੜਿਆਂ ਕਰ ਏਕ ਠੇ ਏਕ ਰਤੀਲੇ ਪਾਏ, ਪੁਨਃ ਅਸੰਖ ਖਤੇ ਖਿਨ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਿਆਰਾ। ਸਰਬ ਗਿਆਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਨਿਆਂ ਉਸਦੀ ਅਨੰਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਤੱਕੜ ਤੇ ਤੁਲ ਕੇ ਤਾਰੇ। ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਬਖਸ਼ਿਣ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਪੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਆਸਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗੀ। ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਉਦਮ ਵੀ ਕਰੇਗੀ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਟੇਕ ਅੰਦਰ ਬੱਜੇਗੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਖੇਪ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਤਾਸੀਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਤਾਸੀਰ ਹੁਕਮੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਹੁਕਮ ਬੁੱਝਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਵੀ ਨਾਮ ਸੀ, ਕਰਮ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਨੇ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਕੀਏ, ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਸਿਰ ਕਰਮਾ ਕੀਏ। ਨਾਮ ਨੇ ਕਰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਨਾਮੀ ਤੇ ਟੇਕ ਧਾਰਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਮੇਲ ਲਹੇ, ਨਾਨਕ ਬਲ ਜਾਉ। ਐਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਕੀਏ ਲੱਗ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸਵਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮੇ ਬੁਝ ਨਿਹਾਲ ਸੁਖ ਸੁਖੇਟਿਆ, ਹੁਕਮੇ ਬੁਝ ਨਿਹਾਲ ਖਸਮ ਫੁਰਮਾਇਆ। ਨਿਰੁਕਤ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਅਰਬੀ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੀਸਰਾ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਰਹਿਤ ਸਰੂਪ ਵਾਂਗੂ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਰਹਿਤ ਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਕਾਲਕ ਚੇਤਨ ਸਤਿਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਸਦੇ ਸਰੂਪ ਵਾਂਗੂ ਅਕਹਿ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਯਥਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਚੇਤਨ ਸਤਾ ਦਾ ਉਹ ਰੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਗਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਪਾਲਣਾ ਆਦਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਉਤਪਤੀ ਪਾਲਣਾ ਆਦਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਕਮੀ ਓਮਨ ਆਕਾਰ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਪਦਾਂ ਨਾਲ ਟੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਵਾਲੀ ਇੱਛਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਬਦ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਆਕਾਰ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਆਕਾਰ, ਪਸ਼ੂ ਅਰ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ, ਸੂਰਤਾਂ, ਸਰੂਪ, ਵਜੂਦ। ਜੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜੀਵ, ਪੰਜਾਬੀ ਜੀਏ ਜੀ, ਜਾਨਦਾਰ, ਜਾਨ ਵਾਲਾ, ਜੀਵ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਦਾਤ। ਹੋਮੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮੈਂ ਪਨੇ ਦਾ ਭਾਵ ਜੋ ਅੰਦਰ ਸਥੂਲ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਜਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾ ਨਿਵਾਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦ ਹੋਂ ਵੱਲ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਆਪਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਵ ਤੋਂ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਮੇ ਹੈ ਅਹੰਕਾਰ ਅਭਿਮਾਨ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਗਿਣਿਆ ਹੈ, ਯਥਾ ਹੋਮੇ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰੂਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, इस लिखत का अगला हिस्सा आप जी ने अगे पढ़ के सरवण कराने की कोशिश करांगे जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।